بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں، جن کی رحمت سب کے لیے ہیں، جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کو کہہ دو کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے اور سب ان کے محتاج ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور اس اللہ تعالیٰ کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے. یہ ہو گئی قل ہو اللہ والی سورت، جس کا نام سورۃ الاخلاص ہے. یہ ہجرت سے پہلے 22 نمبر کے اوپر اتاری گئی. قل اعوذ برب الناس کے بعد اور سورہ نجم سے پہلے. اس سورت کی ایک خوبی یہ ہے کہ پوری سورت میں صرف ایک زیر آیا ہے، کسرہ ایک ہی مرتبہ آیا ہے. اس سورت کو سورہ اخلاص کہنے کی حکمت یہ سمجھ میں آئی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خالص پیور عبادت کی دعوت دی گئی ہے، اور یہی خالص پیور اللہ کی عبادت انسان کے لیے اللہ کے عذاب سے خلاصی اور چھٹکارے کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ جو ہے اس سورت کا مبارک نام ہے. یہ سورت چھوٹی سورت ہے، پڑھنا بھی ہمارے لیے آسان ہے. صرف 4 آیتیں ہیں. ذرا اندازہ لگاؤ کہ جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا، تو پورے عرب میں، پوری دنیا میں لوگ بت پرستی میں لگے ہوئے تھے. لکڑے میں سے، پتھر میں سے، لوکھنڈ لوہے میں سے، سونے چاندی میں سے لوگ بت بناتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کی لوگ عبادت کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. ایک قصہ ہو گیا. دو آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس زمانے کے اندر عربستان کا جو ماحول تھا، اس ماحول کے اعتبار سے انہوں نے ایک سوال کیا. سوال یہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہو، تو بتلاؤ کہ تمہارے اللہ کس چیز سے بنے ہیں؟ وہ جیسے اپنے بتوں کو بناتے تھے، اس طرح وہ اللہ کو بھی بنا ہوا سمجھنے لگے. تو پوچھنے لگے کہ تمہارے اللہ سونے میں سے بنے ہیں، چاندی میں سے بنے ہیں، لکڑی میں سے بنے ہیں، پتھر میں سے بنے ہیں، مٹی میں سے بنے ہیں، یا آئن لوہے لوکھنڈ میں سے بنے ہیں؟ یہ سوال کیا ان لوگوں نے. تو اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری، اور اس میں ان کو جواب دے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سونے کے نہیں ہیں، چاندی کے نہیں ہیں، لوکھنڈ کے لوہے کے نہیں ہیں، تانبے پیتل لکڑے اور پتھر کے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز سے بنے نہیں ہیں. دیکھو दुनिया में कोई चीज जब किसी चीज से बनती है तो पहले वो चीज वजूद में होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने सोने में से चूड़ियां बनाई तो पहले सोना हुआ ना, फिर चूड़ी बनेगी। आपने रोटी बनाई तो पहले आटा हुआ ना, तब रोटी बनी। तो कोई चीज जब दूसरी चीज में से बनती है तो पहले वो चीज मौजूद होनी चाहिए। अगर अल्लाह ताला नऊज़ु बिल्ला सोने में से बने तो समझो कि पहले सोना था फिर अल्लाह बने, और अल्लाह सोने के मोहताज हो गए। तो कुरान में सूरे कुल हो अल्लाह में कहा अल्लाहु समद, अल्लाह सोने के मोहताज नहीं, चांदी के मोहताज नहीं, अल्लाह तांबे पीतल लोहे लकड़े पत्थर के मोहताज नहीं, अल्लाह किसी चीज में से नहीं बने। एक और किस्सा सुनो। दुनिया में लोग फैमिली पूछते हैं कि भाई आपकी फैमिली कौन सी, आपका कुटुंब कौन सा, आपका खानदान कौन सा, आपके अब्बा कौन, आपकी अम्मा कौन, ऐसे सवाल जवाब लोग करते हैं प्रूफ के लिए। तो बाज लोग फालतू पूछते हैं, बाज लोग किसी काम से पूछते हैं। तो कुछ लोगों ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल किया कि अल्लाह ताला का हसब नसब किया, अल्लाह की फैमिली कौन सी, अल्लाह का खानदान कौन सा, अल्लाह के अब्बा कौन, अल्लाह के अम्मा कौन, ये सब ऐसे फालतू वाही तबाही सवाल किए। तो उसके जवाब के अंदर अल्लाह ताला ने कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत उतारी, और कुल हु अल्लाह की सूरत उतार करके अल्लाह ताला की तरफ से उनको जवाब दे दिया गया कि अल्लाह ताला की कोई फैमिली नहीं, अल्लाह का कोई कुटुंब नहीं, अल्लाह का कोई खानदान नहीं, अल्लाह के कोई बाप नहीं, अल्लाह के कोई माँ नहीं। अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया और अल्लाह ताला की कोई औलाद भी नहीं है, अल्लाह ताला के बाप दादा भी नहीं है, माँ दादी नानी भी नहीं है, और बेटे पोते नवासे कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला की जात फैमिली से, कुटुम्ब से, तमाम चीज से बिल्कुल पाक है। अब देखो आयत में कितना प्यारा लफ्ज आया, कुल हु अल्लाहु अहद। अहद किसको कहते हैं? अहद कहते हैं जिस जात का कोई जूज न हो, कोई हिस्सा न हो, कोई टुकड़ा न हो। देखो बाज मरतबा कोई चीज ऐसी होती है कि वो एक है लेकिन बहुत सारी चीजों को मिला करके वो एक चीज बनती है। जैसे कि एग्जांपल कार ले लो, कार एक है टैक्सी, लेकिन उसमें उसके व्हील है, पहिए हैं, इसी तरीके से कांच है, अंदर बैठने की सीट है, अंदर जो है पेट्रोल की टांकी है, कितनी सारी चीजों को मिलाकर एक कार बनती है। तो बस अहद लाकर के ये इशारा हो गया कि अल्लाह ताला हर एतबार से एक है, उनका कोई जूज नहीं, उनका कोई हिस्सा नहीं, उनका कोई पार्ट नहीं कि बहुत सारी चीजों को मिलाकर के अल्लाह को बनाया हो, ऐसा भी नहीं है। तो ये अहद का लफ्ज बड़ा जामिअ है वाहिद के मुकाबले के अंदर। तो अल्लाह ताला की जात, उनका कोई हिस्सा नहीं, कोई जुज नहीं, अल्लाह ताला किसी चीज को मिला करके बनाए नहीं गए हैं, ये है कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। देखो भाई इस दुनिया में किस्म किस्म के लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला को ही नहीं मानते। तो उनको कहा गया कि कुल हु अल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, मौजूद है। ये पूरी दुनिया की हर चीज अल्लाह को बतलाती है। एक फारसी में बहुत अच्छी बात किसी ने कही, हर रुया के अज़मी रुयत वहदहु ला शरीक लहू गोयत, यानी जमीन के अंदर से जब कोई दरख्त निकलता है, कोई पौधा निकलता है, तो पहले एक उसकी कोपल निकलती है। आप कोई भी चीज जमीन के अंदर बो, जमीन में लगाओ, गेहूं लगाया, चावल लगाया, ज्वार लगाई, बाजरा लगाया, जब उसमें से पौधा निकलेगा, दरख्त निकलेगा, तो एक निकलेगा। वो एक पौधा क्या ऐलान करता है कि अल्लाह मेरे बनाने वाले एक है। फिर बाद में दो तीन सब होता है। हमारी औरतें घरों में मूंग है, चने हैं, ऐसी चीजों को पानी में कपड़े में भिगो के रखती है और फिर उसके अंदर से पौधे छोटे छोटे निकलते हैं तो उसको पका के खाते हैं। फणगावेला चना, तो ये जो चीज है आप खुद उसमें तजुर्बा करके देख लो कि ये मग है, चने हैं, कितने भी सूखे दाने हैं, उसको पानी में भिगो, कपड़े में भिगो, फिर उसके अंदर से जब पौधा निकलेगा तो पहला एक निकलेगा। ये ऐलान करता है कि इस दुनिया को और मुझको और सारी कायनात को बनाने वाले एक अल्लाह है। दूसरी चीज, बाद लोग अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह के साथ पार्टनर भी मानते हैं, शरीक भी मानते हैं, भागीदार भी मानते हैं कि ये सब अल्लाह के शरीक और भागीदार है। तो कह दिया गया कुल हो अल्लाहु अहद, अल्लाह की जात भी एक, अल्लाह सिफात और कमालात और खूबियों में भी एक, उनका कोई शरीक नहीं, उनका कोई पार्टनर नहीं, उनका कोई हिस्सेदार नहीं है। सब चीजों का बहुत प्यारा रद कर दिया गया। तो फरमाया कि कुल हो अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। समद किसको कहते हैं? वो जात, वो अल्लाह के तमाम मखलूकात अपनी जरूरत पूरी करने में उनके मोहताज है और वो अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है। बहुत ध्यान से समद का तर्जुमा सुनो। जनरली हम समद का तर्जुमा क्या कर देते, बेनियाज बेनियाज बेनियाज, नहीं, बहुत ध्यान से तर्जुमा करो। तैसुरुल कुरान के मुअल्लिफ ने यही बेहतरीन प्यारा तर्जुमा किया, बहुत उम्दा तर्जुमा किया, और यही हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने भी यही तर्जुमा किया। क्या तर्जुमा किया? अल्लाहु समद, अल्लाह वो जात है कि तमाम मखलूक अपनी जरूरतों में उसी अल्लाह के मोहताज हैं और वो अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है। कितना प्यारा तर्जुमा है। एक तर्जुमा समझ का क्या है कि जिनसे बड़ा कोई सरदार और मालिक नहीं। दुनिया में छोटे छोटे सरदार है, छोटे छोटे बादशाह है, लेकिन सबसे बड़े सरदार, सबसे बड़े मालिक, सबसे बड़े वो है अल्लाह ताला, उनसे बड़ा कोई नहीं। ये है अल्लाहु समद। और आगे क्या फरमाया? लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह ताला ने किसी को जना नहीं, न अल्लाह की कोई औलाद है। अल्लाह ताला किसी से जने नहीं गए, पैदा नहीं हुए, और अल्लाह किसी की औलाद भी नहीं है। तो अल्लाह हमेशा से हैं, हमेशा तक रहेंगे। देखो भाई, बहुत सारे लोग नऊज़ुबिल्लाह जहालत में अल्लाह की औलाद मानते हैं। कोई कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, کوئی کہتا ہے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ سب غلط ہے. لم یلد ولم یولد, اللہ کسی کی اولاد نہیں اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں. یہ بہت پیارا جو ہے بیان ہے اس کے اندر. آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. کفو کس کو کہتے ہیں؟ دو شخصیت, دو ویکتی, ٹو پرسن, اپنے کمالات میں, اپنی خوبیوں کے اندر ایک دوسرے کے برابر ہوئے, ایسے برابر ہوئے کہ کسی میں کسی سے کوئی کمی نہ ہوئے, اس کو کہتے ہیں کفو. کہتے ہیں نہیں کہ بھئی یہ ڈاکٹر صاحب ہے, دونوں ایک دم برابر برابر ہے, دونوں کا نالج, دونوں کا ایجوکیشن, دونوں کا ایکسپیرئنس, دونوں کی ڈگری, دونوں کا انوبھو, تجربہ, ہر چیز میں دونوں برابر برابر ہے, اس کو کہتے ہیں کفو. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوہار ہے, یہ دونوں لوہار بالکل ایک جیسے ہیں. تو یہاں کیا کہا گیا؟ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَد, اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے, کوئی اللہ کے برابر ہو بھی نہیں سکتا ہے. کتنی پیاری یہ صورت ہے, ایمان کی انرجی, ایمان کی طاقت, ایمان کا پورا روحانی پاور اور خلاصہ قل ہو اللہ احد کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرما دیا. اب ذرا دھیان سے اس سورت کی فضیلتیں سنو, بہت پیاری پیاری فضیلت ہے اس سورت کی. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی. اصل ہوا یہ تھا, حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے سنا کہ ایک آدمی رات میں قل ہو اللہ پڑھ رہا ہے, بار بار پڑھ رہا ہے, کنٹینیوز قل ہو اللہ پڑھ رہا ہے. اب اس سننے والے نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حضور فلانے آدمی تو بس قل ہو اللہ ہی پڑھتے رہتے ہیں, قل ہو اللہ ہی پڑھتے رہتے ہیں. یعنی یہ کہنے والے نے حضور کے سامنے ایسی اسٹائل میں کہا کہ گویا کہ وہ اس کو چھوٹی بات سمجھ رہے تھے. ان کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ کوئی بڑی سورت پڑھتے, کوئی بڑی قرآن میں دوسری بڑی بڑی سپارے پڑھتے, یہ کیا کہ بس قلو اللہ بس بار 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 کنٹینیو وہی پڑھ رہے. جب یہ بات حضور کے سامنے کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ قل ہو اللہ میں تو اللہ نے ایک تہائی, ون تھرڈ, ایک ترتیاؤنس قرآن کا ثواب رکھا ہے. یعنی جو ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لے اس کو 10 سپارے پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. اور ایک مرتبہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ چلو میں تم کو ایک تہائی, ایک ترتیاؤنس قرآن پڑھ کے سناتا ہوں. صحابہ جمع ہو گئے, حضور نے قل ہو اللہ کی پوری سورت پڑھ دی. گویا کہ حضور نے پریکٹیکلی بتلا دیا کہ ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے سے 10 سپارے پڑھنے کے برابر اللہ تعالی ثواب عطا فرماتے ہیں. اور یہ بھی دھیان سے سن لو کہ جو آدمی قل ہو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ قل ہو اللہ کی محبت کی برکت سے جنت میں داخل فرما دیں گے, جنت عطا فرما دیں گے اس سورت کی برکت سے. اس کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سپاہیوں کی جماعت بھیجی صحابہ کی, ایک صحابی کو امیر بنایا. اب یہ جو امیر صاحب تھے جب بھی نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں الحمدو پڑھتے, پھر کوئی سورت پڑھتے, لیکن قل ہو اللہ بھی پڑھتے. یعنی الحمدو کے بعد کوئی سورت پڑھی लेकिन कुल हु अल्लाह जरूर पढ़ते थे, हर सूरत में हर रकात में कुल हु अल्लाह जरूर पढ़ते थे। तो जब ये जमात वापिस आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अमीर साहब की कारगुजारी बयान की गई कि अमीर साहब तो हर नमाज में हर रकात में अलहम्द और सूरत मिला के कुल हु अल्लाह भी पढ़ते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अमीर साहब को पूछा कि भाई तुम क्यों ऐसा करते थे। अमीर साहब ने कहा कि इसमें रहमान अल्लाह की सिफत बयान की गई, खूबी बयान की गई, इसीलिए मुझे बहुत मोहब्बत है, इसीलिए मैं पढ़ता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन अमीर साहब को बतला दो कि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत फरमाते हैं, यानी जो आदमी कुल हो अल्लाह से मोहब्बत करेगा अल्लाह उनसे मोहब्बत करेंगे। और एक हदीस से पता चलता है कि जो आदमी कुल हो अल्लाह पढ़े अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमा देंगे। अजीब फजीलत। इसीलिए कुल हो अल्लाह पढ़ो अल्लाह मोहब्बत करेंगे, कुल हो अल्लाह पढ़ो अल्लाह जन्नत अता फरमाएंगे। मैं एक मर्तबा तंजानिया गया था, वहां की कैपिटल है दार ए सलाम। उसे तो दारुस सलाम जन्नत का नाम है लेकिन तंजानिया की कैपिटल का भी नाम है दार ए सलाम। तो वहां रमजान में मैंने तरावी की अजीब तरतीब देखी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे यहाँ बहुत से लोग 27 को खत्म करके अलम तरह की तरावी पढ़ते हैं। और अलम तरह की तरावी कैसे पढ़ते हैं सब जानते हैं कि पहली 10 रकात में अलम तरह से कुल औज़ु बिरब्बिन नास पर गए, फिर दूसरी 10 रकात में अलम तरह से कुल औज़ु बिरब्बिन नास पर गए। वहां तरावी का जनरल मामूल, यानी कुरान की तरावी तो खास खास जगह पर होती, बाकी जनरल तरावी वो लोग कैसे पढ़ते हैं। पहली रकात में अलम तरह तो दूसरी में कुल हो अल्लाह, पहली रकात में लीलाफी दूसरी में कुल हो अल्लाह, इस तरह वो लोग 20 रकात पूरी करते हैं कि पहली रकात में कोई भी सूरत पढ़ेंगे लेकिन दूसरी रकात में कुल हो अल्लाह जरूर पढ़ेंगे। मुझे बहुत अच्छा तरीका लगा कि बहुत प्यारा तरीका है। तो मैंने भी जब भी ऐसा मौका मेरे सामने आता है मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर अमल कर लेता हूँ। इसीलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि एक मर्तबा कुल हो अल्लाह पढ़ने पर 10 सुपारे का सवाब मिलता है। तो कम से कम रोजाना सुबह में 3 मर्तबा कुल हो अल्लाह पढ़ो, 3 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ो और अपने खानदान के तमाम मरहूमों को पूरी उम्मत को ईसाले सवाब कर दो। कितना इजी और आसान ईसाले सवाब करने का तरीका है कि 3 बार कुल हो अल्लाह पढ़ी, 3 बार दुरूद पाक पढ़ा और मरहूमों को ईसाले सवाब कर दिया, तो मरहूमों को 30 सुपारे का सवाब मिल जाएगा। कितना आसान और कितना प्यारा अमल है। अब देखो मैं आपको बंगले बनाने की तरतीब बतलाऊं। बंगले हरेक को चाहिए, महल हरेक को चाहिए। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 10 मर्तबा कुल हो अल्लाह पढ़ी अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बना देंगे, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक महल बना देंगे। जिसने 10 मर्तबा कुल हो अल्लाहु अहद पढ़ ली उसके वास्ते। अब देखो जब ये हदीस सुनी तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम इस सूरत में तो हम 10-10 मर्तबा को लुहल्ला पढ़ के अपने लिए जन्नत में बहुत सारे महल बना लेंगे। इसलिए कि कितना आसान, 10 मर्तबा को लुहल्ला पढ़ो एक महल बन गया। और हुजूर ने फरमा दिया हमारा ईमान है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला बहुत बड़े देने वाले हैं, बहुत बड़े दाता है, जितना भी तुम अमल करो अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा इनाम है, तुम जितने चाहे इतने महल बनवा लो। इसीलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि 10 मर्तबा कुल हो अल्लाह पर एक महल बन जाता है। अभी लॉकडाउन का जमाना है, घरों में बैठे हो, मैं आप सबको कहता हूँ कि तस्बीहात पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, रोज कम से कम एक तस्बीह कुल हो अल्लाह की पढ़ लो, तो एक तस्बीह यानी 100 मरतबा कुल हो अल्लाह पढ़ोगे तो 10 महल जन्नत में बन जाएंगे। फिर एक एक महल सबके लिए इसाले सवाब कर दो, एक दादा का, एक दादी का, एक अम्मा का, एक अब्बा का, एक फुलां का, एक फुलां का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को, और सबको इसाले सवाब कर दो। कितना प्यारा अमल है। अल्लाह ताला हम सबको ये छोटे से अमल से बड़ा फायदा उठाने की और कमाने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। गोया के शॉर्ट एंड स्वीट, छोटा और मीठा और बहुत बड़ा ये अमल है सूरह कुल हो अल्लाह वहद को पढ़ना। इसीलिए रमजान का महीना आ रहा है, और अभी भी जिन लोगों को कुरान नहीं आता, मैं उनको कहता हूं कि कुरान सीखो, लेकिन जब तक कुरान सीखे चलते फिरते कुल हो अल्लाह पढ़ते रहो तो कितना बड़ा सवाब मिलेगा। एक एक कुल हो अल्लाह पर 10-10 सुपारे का सवाब। कितना आसान, कितना आसान। जब भी कब्रिस्तान से गुजरो कुल हो अल्लाह पढ़ के इसाले सवाब कर दो, किसी के इंतकाल की खबर सुनो कुल हो अल्लाह पढ़ के इसाले सवाब कर दो। कितना प्यारा अमल है। और एक हदीस में आता है कि जो आदमी सुबह में 3 मरतबा कुल हो अल्लाह पढ़े, शाम में 3 मरतबा कुल हो अल्लाह पढ़े, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़े, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़े, यानी 3 मरतबा कुल हो अल्लाह, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास, सुबह में पढ़ो शाम को पढ़ लो, तो अल्लाह ताला हर बला से हिफाजत करेंगे, अल्लाह हर मुसीबत से हिफाजत करेंगे, अल्लाह हर बला से बचाने के लिए काफी है। तो मैं आप सबको नसीहत करता हूँ कि अभी जो माहौल चल रहा है, सुबह शाम 3 मरतबा कुल हो अल्लाह, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लो, और जो है अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करने के लिए काफी शाफी हो जाएंगे। एक हदीस में तो अजीब बात फरमाई, एक रिवायत में, कि तौरात, जबूर, इंजील, कुरान चारों बड़ी आसमानी किताब में अल्लाह ताला ने ये तीनों सूरत उतारी थी, कुल हो अल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये इतनी बड़ी फजीलत वाली सूरत है कि अल्लाह ने बहुत पहले तौरात उतारी, जबूर उतारी, इंजील उतारी, तीनों सूरतों, तीन चारों किताबों के अंदर अल्लाह ताला ने ये तीनों सूरतों को उतारा था। इससे अंदाजा लगाओ कि कितनी बड़ी फजीलत वाली सूरत है। और मैं आपको जो है ना एक अजीब बात बतला दूं, ये सुबह शाम की तो फजीलत मैंने आपको बतला दी कि सुबह में 3 मरतबा, शाम में 3 मरतबा, ये तीन तीन सूरत पढ़ लो, अल्लाह हर बला मुसीबत से हिफाजत करेंगे। एक और अमल ध्यान से सुन लो, रात को सोते वक्त का। कुल या अय्युहल काफिरून की जब तफसीर हुई थी तो आपको बतलाया था कि रात को पलंग पर, बिस्तर पर बैठकर 1 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ ली, उसके बाद क्या करने का, कि 1 मरतबा कुल हो अल्लाह, 1 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, 1 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये तीनों सूरत एक एक मरतबा पढ़ के अपने हाथ पर फूक मारो और पूरे बदन पर फिरा दो, पहले मुंह पर, फिर सीने पर, फिर पेट पर, फिर पैर पर, फिर पीछे पीठ पर, कमर पर, फिर नीचे तक, फिर दूसरी मरतबा कुल हो अल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो। दोनों तरीके है, पढ़ते वक्त दोनों हथेली को मुंह के सामने रखो, या ये के जो है पढ़ के दोनों हथेली के ऊपर फूक मारो, दम करो और फिर पूरे बदन पे फिराओ, फिर तीसरी मरतबा कुल हो अल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के दोनों हथेली पर दम करो और पूरे बदन पर फिरा लो। तो आज से ये सिलसिला शुरू करो। ये सुबह शाम का अलग है, कुल हो अल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, तीन तीन मरतबा पढ़ने का, और ये रात को सोते वक्त का स्पेशल अलग बतला रहा हूँ। कुल या अय्युहल काफिरून 1 मरतबा, फिर कुलहोल्ला कुलाऊ से रबिल फलक कुलाऊ से रबिल नास एक मरतबा पढ़ के दोनों हथेली पर फूक मार के पूरे बदन पर फिराने का, फिर दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा, इस तरह करके सो जाओ। अल्लाह ताला हम सबको हदीस में, ये हदीस में आई हुई चीज है, यही तरीका और इसी तरतीब से करना हदीस में आया है। अल्लाह ताला हम सबको हदीस में आई हुई इन चीजों पर यकीन अता फरमाए, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उसके फायदों से, उसकी बरकतों से अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हम सबको मालामाल फरमाए।